समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। पब्लिक स्पीक में हमारा आज का विषय है जन्म और मृत्यु का डिजिटली पंजीकरण। डिजिटल पंजीकरण की क्या प्रक्रिया है, इसके लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है और इसका क्या महत्व है, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। श्रोताओं, आप भी संबंध में सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं एडिशनल रजिस्ट्रार जनरल संजीव कुमार। संजीव जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है।
धन्यवाद मैडम।
श्रोताओं, स्टूडियो के फोन लाइंस खुली हैं। नंबर है 2331-4444 और 2371-7106। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। संजीव जी, कार्यक्रम की शुरुआत में हम ये जानना चाहेंगे कि मॉनसून सत्र में पारित जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 की क्या विशेषताएं हैं?
रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट जो है, यह 1969 में इनैक्ट किया गया था और ये एसेंशियली सेंट्रल एक्ट है और इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो लास्ट 50 ईयर्स में इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं लाया गया था और इस प्रोसेस में सोसाइटी में काफी चेंजेस हुए। टेक्नोलॉजिकल फील्ड में भी, पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर में काफी हमें डेवलपमेंट देखने को मिला। इन बातों को ध्यान में रखकर और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सिटीजन फ्रेंडली बनाने के लिए इसमें अमेंडमेंट किए गए। इसके जो मुख्य बिंदु हैं, सबसे पहले तो डिजिटल रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन किया गया सो दैट की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट हम इंश्योर कर सकें। सेकेंड, नेशनल और स्टेट लेवल पे डेटाबेस ऑफ रजिस्टर्ड बर्थ्स एंड डेथ्स इसमें क्रिएट करने की बात की गई है, जिससे कि नेशनल और स्टेट लेवल पे जो डिफरेंट डेटाबेसेस हैं उसको हम अपडेट कर सकें और ज्यादा रोबस्ट कर सकें। तीसरा, बर्थ सर्टिफिकेट को एकमात्र सिंगल डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा ऐसे बच्चों के लिए जो कि 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्म लिया है, फॉर एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में जॉब के लिए या आधार कार्ड के लिए, वोटर आईडी कार्ड के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए और अन्य मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए। चौथा, इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को भी सिंप्लीफाई किया गया है, जब खासकर डिलेड रजिस्ट्रेशन में अगर किसी ने बर्थ रजिस्ट्रेशन या डेथ रजिस्ट्रेशन 1 साल से तक नहीं कराया है तो उस प्रोसेस में पहले फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लाना पड़ता था, लेकिन अब हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या एसडीएम और डीएम के ऑर्डर से कर सकते हैं। पहले हमें नोटराइज्ड एफिडेविट लेकर आना पड़ता था, अब हम सेल्फ सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट से कर सकते हैं। फिर इसमें अबंडेंट चिल्ड्रेन, ऑर्फन चिल्ड्रेन या सरोगेट चाइल्ड के रजिस्ट्रेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं उसको इसमें चिन्हित किया गया है। फिर जब मास एपिडेमिक हो जाता है या फिर डिजास्टर होता है तो उसमें काफी लोगों का डेथ हो जाता है तो उस समय उनके डेथ रजिस्ट्रेशन को स्पीड अप करने के लिए इसमें स्पेशल सब रजिस्ट्रार के अपॉइंटमेंट की व्यवस्था की गई है। फिर इसमें ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म की भी व्यवस्था की गई है और आधार नंबर अगर बर्थ रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में पेरेंट्स और इन्फॉर्मेंट का अवेलेबल हो तो उसको कलेक्ट करने की व्यवस्था की गई है। पहले पेनाल्टी का जो मेजर्स थे वो काफी कम थे, बहुत नॉमिनल होते थे, अब उसको थोड़ा सा समय के साथ थोड़ा चेंज उसमें इम्प्रूवमेंट की गई है। ये सारे मुख्य बिंदु हैं।
संजीव जी, हमारे एक श्रोता है जयकिशन, नई दिल्ली से वो जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर है। जयकिशन जी, अपना सवाल पूछिए।
जी नमस्कार।
नमस्कार,
मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो भी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हो या सरकारी हो, या कोई बच्चा घर में, आज भी देहातों में घर में बच्चा पैदा होते हैं, दाई के बाद दाई करती हैं, तो क्या ये तीनों डाटा जो हैं इमीडिएट किसी संस्था में चला जाता है जिससे कि मैं अपने घर बैठ के डिजिटल इसको मतलब निकाल सकूं कि भाई यहां जन्म हुआ है और यहां ये आदमी मरा है, तो क्या वो हॉस्पिटल वहां भेज देता है या नहीं भेज देता? नंबर एक। नंबर दूसरा, अगर मैं फर्ज कीजिए दिल्ली में रहता हूं और हैदराबाद चला गया और वहां मेरी मृत्यु हो गई, तो क्या उस डाटा को भी नेशनल लेवल के ऊपर फिलअप हो जाता है कि भाई ये आदमी मर गया है तो ये दिल्ली में चले, जैसे अभी कोविड के अंदर हुआ कि दिल्ली में किसी भी जगह चाहे एनडीएमस हो, एमसीडी हो, पार्लियामेंट हो, अगर वहां नेगेटिव आता है तो तुरंत कंप्यूटर मास्टर कंप्यूटर में चला जाता था और पता चल जाता है यहां क्या ये ऐसा करेंगे। और नंबर तीसरा मेरा ये पूछना आपसे है कि ये जो डिजिटल हम करने जा रहे हैं, क्या इससे पब्लिक को फायदा होगा? हम अपने घर में बैठे बैठे जन्म सर्टिफिकेट ले सकते हैं और जो डेथ हो जाती है क्या ये डाटा जो है आप चुनाव आयोग को भेजते हैं जिससे कि चुनाव आयोग भी संज्ञान ले ले और डुप्लीकेसी ना हो सके? भाई ये मेरे क्वेश्चन है, कृपया बता दें। मैं
देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि अगर जन्म और मृत्यु हॉस्पिटल में होता है तो यह हॉस्पिटल की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको रजिस्ट्रार के पास इन्फॉर्मेशन दे और वो बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन कराए। और जैसे ही जब हॉस्पिटल वो इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार को देता है तो ये नेचुरली ये नेशनल और स्टेट लेवल डेटाबेस का ये पार्ट बन जाता है। और अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा कि अगर दिल्ली का कोई हो और वो चेन्नई चला गया और वहां डेथ हो गया, तो यहां पे इम्पोर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि बर्थ और डेथ प्लेस ऑफ ऑकरेंस पे ही होता है। तो अगर चेन्नई में डेथ हो गया तो उसका रजिस्ट्रेशन चेन्नई में ही होगा। लेकिन इसमें डिजिटल रजिस्ट्रेशन से फायदा यह है कि परिवार वाले, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पहले उसे चेन्नई जाना पड़ेगा और उसको वहां जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जब डिजिटल रजिस्ट्रेशन होता है तो आप दिल्ली से भी उस इन्फॉर्मेशन को रजिस्ट्रार को रिपोर्ट कर सकते हैं और इसमें इसे पब्लिक कन्वीनियंस को फायदा होता है। और तीसरा जो आप बात बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि नहीं, तो इलेक्शन कमीशन को सारे बर्थ और डेथ रजिस्टर जो होते हैं रजिस्ट्रार के पास, उसको पहले से ही एक्सेस प्राप्त है और वो उसको यूज करके अपने इलेक्ट्रल वोटर आईडी जो भी डेटाबेस है उसको इम्प्रूव करते रहती है।
संजीव जी, आपने बताया कि क्या फायदे इसके हैं, तो उसके और क्या लाभ हैं डिजिटल पंजीकरण होने से?
डिजिटल पंजीकरण रजिस्ट्रेशन से सबसे बड़ा फायदा पब्लिक कन्वीनियंस है, इसमें एनीवेयर रिपोर्टिंग है। और दूसरा, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी है, नंबर वन। नंबर टू, इससे डिफरेंट नेशनल और स्टेट लेवल डेटाबेसेस क्रिएट होंगे जिससे कि अदर डेटाबेसेस को हमें अपडेट और रोबस्ट करने में हेल्प मिलेगा। और इससे दो फायदे होते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर की एफिशिएंसी बढ़ती है और दूसरा हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो रिस्क होता है वो भी मिनिमाइज होता है।
धर्मवीर हैं हमारे साथ नई दिल्ली से।
नमस्कार जी।
नमस्कार।
धर्मवीर दिल्ली से बोल रहा हूँ
जी, बोलिए।
सर नमस्कार, मेरे दो सवाल हैं। अगर हम बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो एक सर्टिफिकेट तो पैसे नहीं लेते, अगर हमें पांच और बनाने पड़ते हैं तो उनके लिए अलग से वो पैसे लेते हैं कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही जमा होता है, कहीं भी जमा कराना पड़ता है बर्थ सर्टिफिकेट? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे डेथ के बाद जो सर्टिफिकेट होता है उसकी सर्टिफिकेट की वैल्यू लगता है जब हम शमशान घाट की पर्ची दिखाएं, तो अगर पर्ची ही खो जाए तो उसको सर्टिफिकेट बनाने में दिक्कत आएगी, तो उसका क्या प्रोसीजर है?
देखिए, जो पहला प्रश्न आपने पूछा कि पहले सर्टिफिकेट निःशुल्क होता है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगते, और उसके बाद जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उसके लिए कुछ आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, तो ये अभी तक तो ये है ही। लेकिन इसमें जब हम आईटी प्लेटफॉर्म पे जब हम काम करेंगे तो आप इस सर्टिफिकेट को एक तो डाउनलोड करके आप रख सकते हैं और दूसरा आप डिजी लॉकर में भी, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रमोटेड डिजी लॉकर है, आप उसमें भी रख सकते हैं। और जब एक बार डिजी लॉकर में आप रख लेते हैं तो जहां आप अप्लाई करते हैं वो उसको आपका बर्थ सर्टिफिकेट को वहां वेरीफाई करके वो जो काम आप फिजिकल डॉक्यूमेंट देकर करवाना चाहते हैं वो ऑटोमेटिक हो जाता है। सेकेंड थिंग जो आपने पूछा कि क्रिमेशन ग्राउंड का अगर सर्टिफिकेट ये कोई डॉक्यूमेंट भुला गया है और उसको उसके बाद हम कैसे डेथ सर्टिफिकेट बनवाएं, तो इस केस में रजिस्ट्रार पे डिपेंड करता है कि वो क्या इन्फॉर्मेशन आपसे सीक करता है, क्योंकि उसके लिए भी एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है कि इस व्यक्ति का सही में डेथ हुआ है या नहीं हुआ है।
कमलेश कुमार चौरसिया हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से।
हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते सर।
नमस्ते।
मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी बच्ची फरवरी 2018 में जन्म हुआ था उसका, हालांकि आधार कार्ड भी बन गया है, तो क्या आप दोबारा ऑनलाइन उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य है?
इनकी बच्ची का जन्म 2018 में, आधार कार्ड भी बना हुआ है, तो क्या उसका पंजीकरण कराना पड़ेगा डिजिटल?
हाँ, देखिए, आधार कार्ड का बनना और ये बर्थ सर्टिफिकेट का बनना, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। बर्थ सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र एक कानूनी दस्तावेज है जिससे कि आपको जन्म का स्थान और जन्म की तिथि को एस्टेब्लिश करने में ये हेल्प करता है। आधार आपका के लिए वो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, दोनों का पर्पस अलग है। आधार बनवा लेने से जन्म प्रमाण पत्र बनवाना नहीं पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र आपको बना लेना चाहिए।
मतलब जन्म और मृत्यु का डेटाबेस बनने से अन्य डेटाबेस को अपडेट करने में मदद मिलेगी, जैसे आधार है, ड्राइविंग लाइसेंस है और राशन कार्ड है। कहा जा रहा है कि ऐसा जो जन्म प्रमाण पत्र, मतलब जो डिजिटली बनाया जाएगा, वो सिंगल दस्तावेज की तरह इस्तेमाल होगा। सरकारी काम के लिए अब तक अनेक दस्तावेजों की जरूरत पड़ती थी, तो अब क्या सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र रखना ही काफी होगा?
ये 1 अक्टूबर 2023 के बाद जिन बच्चों का जन्म हुआ है उसके जन्म की तिथि और जन्म का स्थान एस्टेब्लिश करने के लिए सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। और ये जो जैसे कि स्कूल कॉलेज में एडमिशन के लिए, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब के लिए, और आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए एक सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में मान्य होगा। इससे जो पहले इनकन्वीनियंस होती थी कि आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को रखने की आवश्यकता पड़ती थी, वो हट गया। अब एक सिंगल यूनिफॉर्म डॉक्यूमेंट से इससे काम चलेगा और इससे बर्थ रजिस्ट्रेशन को भी एनकरेजमेंट मिलेगा।
फोन लाइन पर विपिन है सागर मध्य प्रदेश से।
हाँ मैम, नमस्ते।
नमस्ते विपिन जी।
मैम मेरा एक सवाल था, हमारी सिस्टर है, उनका जन्म 2001 का है, लेकिन जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे कागज में 2002 है, तो 2001 का कोई भी प्रूफ नहीं है और सारे कागज में 2002 है, बट रियल 2001 में जन्म हुआ है, लेकिन 2002 है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ एक चीज है, वो उनका जन्म का जो पंडित जी बनाते हैं वो कागज है जो इसमें 2001 लिखा है, बाकी सारे में 2002 है, तो इसमें हम कैसे ठीक करा सकते हैं?
नहीं, ये जन्म प्रमाण पत्र आपका बना हुआ है?
हमारा संपर्क उनसे टूट गया है।
नहीं, अगर आपने जन्म प्रमाण पत्र आपके नहीं बने हैं तो आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाएंगे, तो आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं देंगे और फिर इनसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऑर्डर लगेंगे और उसके हिसाब से फिर वो जन्म प्रमाण पत्र बनेगा।
मुझे ऐसा लगा इनकी बातों से कि जो प्रमाण पत्र बना है उसमें 2002 लिखा हुआ है, जबकि वास्तविक जो जन्म का वर्ष है वो 2001 है, तो इसमें कैसे सुधार किया जाए?
नहीं, मेरे ख्याल से उनके क्वेश्चन ये था कि जन्म प्रमाण पत्र में 2001 है और बाकी डॉक्यूमेंट्स में 2002 है।
चलिए, हमारी चर्चा जारी रहेगी और हो सकता है इन्हें अपने प्रश्न का जवाब आगे मिल जाए। अब हम घर पे जो बच्चे जन्म लेते हैं उसका कैसे रजिस्ट्रेशन होगा डिजिटली?
जब अगर बच्चे का जन्म घर पे हुआ है तो घर के में जो भी नियरेस्ट रिलेटिव हैं या पेरेंट्स हैं वो इन्फॉर्मेशन डिजिटली ऑनलाइन पोर्टल पे, जो कि आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और उस समय आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस ये लगाना होता है, और उसके बाद ये अगर 21 दिन के अंदर आप ये इन्फॉर्मेशन देते हैं तो ये बर्थ सर्टिफिकेट आपको इस तुरंत मिल जाता है। लेकिन अगर आपको डिले करते हैं तो फिर सब्सिक्वेंट थोड़े थोड़े प्रोसेस और रिक्वायरमेंट होता है।
अभी भी बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसके लिए ये सब थोड़ा मुश्किल है करना, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें? बच्चे का जन्म होगा तो वो किस तरह से पंजीकरण करा पाएंगे?
अगर कोई डिजिटली हैंडीकैप्ड है, अगर उसके पास से मोबाइल नहीं है या ईमेल आईडी नहीं है, तो उस केस में वो रजिस्ट्रेशन यूनिट पे जाकर जा सकते हैं और वहां पे जो रजिस्ट्रार हैं या डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं वो उनका हेल्प करेंगे कि कैसे इन्फॉर्मेशन को डिजिटली सबमिट किया जा सके।
किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है ऐसा प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए, डिजिटल जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र?
अगर 21 दिन के अंदर ही इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है तो एसेंशियली इसमें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ रेजिडेंशियल एड्रेस की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर इसको हम डिले करते हैं, 30 दिन के बाद जाते हैं या 360 एक साल के नीचे होता है, तो उस केस में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार का ऑर्डर लगता है और इसके साथ साथ सेल्फ सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट लगता है। और अगर एक साल तक हम बर्थ हो गया और रजिस्ट्रेशन नहीं कराए तो उस केस में हमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या एसटीएम और डीएम का ऑर्डर लगाना पड़ता है।
गुरुनाथ थाने महाराष्ट्र से हैं। गुरुनाथ जी।
हाँ जी मैम नमस्कार।
नमस्कार।
एक्सपर्ट सर को भी नमस्कार।
नमस्ते।
सर मेरा क्वेश्चन है सर, ये डिजिटल पंजीकरण जो है तो सर ये जो मतलब इसका फायदा मतलब ये पता लगाने में कितना फायदा होगा कि जो आदमी मरा है और सरकारी जो उसको सुविधा मिल रही है तो मतलब पता लगाने में इसका कितना मदद होगा, क्योंकि आदमी की मृत्यु होने के बाद भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जगह पे इसका मतलब नाम कटता नहीं है और सुविधा ली जाती है। तो सर थैंक यू सर।
ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये जब हमारे पास ये राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर हम डेटाबेस ऑफ रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड बर्थ और डेथ्स बना लेते हैं, तो ऐसे जितने भी बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं या जैसे आपने कहा कि पेंशन के लिए या ये, उनके साथ वो डेटा को शेयर किया जा सकता है। और इसके बाद जब वो डेटा शेयर हो जाता है तो उनके डेटाबेस में ऐसे लोगों का डिजीज का नाम फ्लैग हो जाता है और फिर वो जो संबंधित एजेंसीज है, जो संबंधित अधिकारीगण है, वो अपने एक्ट और अपने नियम के अनुसार उसको उस डेटाबेस से हटाने का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे डेफिनेटली पब्लिक एक्सपेंडिचर की एफिशिएंसी में काफी इंक्रीज होगा।
आपने ये बात की थी कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा भी बढ़ेगी अगर आपके पास ये डेटाबेस होगा तो।
इससे इसमें यह है कि हमारे पास से ड्राइविंग लाइसेंस का डेटाबेस है, आधार का डेटाबेस है, और अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो वैसे ड्राइविंग लाइसेंस जो कि डिजीज का है या वैसे आधार जो कि डिजीज का है उसको मिसयूज किया जा सकता है और इलीगल एक्टिविटीज में भी यूज किया जा सकता है। तो उसका यूज एक इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन जाता है। तो हम जब हमारे पास ये डेटाबेस बन जाता है रजिस्टर्ड बर्थ्स एंड डेथ्स का नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे, तो ये हेल्प करेगा डीएक्टिवेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स में जो, और इसका यूज इलीगल एक्टिविटीज में नहीं हो पाएगा।
जमशेदपुर से हमारे श्रोता हैं श्यामो महतो। श्यामो जी क्या जानना चाहते हैं आप?
नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आकाशवाणी पूरे टीम को प्रोग्राम देने के लिए। जी
आप अपना सवाल पूछिए।
सवाल है कि कोई आदमी अगर डेथ हो जाती है तो मैंने कितना दिन के तक हमें उसका डेथ सर्टिफिकेट बना सकते हैं और उसमें देरी होने पर पेनल्टी भी लगती है क्या? और नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैरिज सर्टिफिकेट या मैरिज रजिस्ट्रेशन बनाने से हमें क्या लाभ मिलता है ये थोड़ा बताएंगे हमें। ओके थैंक यू।
कितने दिन के अंदर सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए, अगर देर हो जाए तो क्या पेनल्टी भी लगेगी और बनवाने का फायदा क्या है, ये तीन सवाल हैं इनके।
देखिए अगर डेथ जब हो जाता है तो उसके 21 दिन के अंदर जनरली रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, और अगर 21 दिन के अंदर जब रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर देते हैं तो उस पर कोई भी लेट फी नहीं लगता और आपको एक निःशुल्क डेथ सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन अगर हम 21 दिन के बाद हम करते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा फिर नॉमिनल फी लेट फी पे करना पड़ता है और 30 दिन तक में तो 2 रूपये में हो जाता है, और जब 30 दिन से भी ऊपर हो जाता है तो फिर हमें डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार का ऑर्डर लगाना पड़ता है, और अगर 1 साल तक भी आपने डेथ रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो उस केस में हमें फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या एसडीएम या डीएम का ऑर्डर लगवाने की आवश्यकता पड़ेगी, और साथ साथ एक लेट फी भी उसमें थोड़ा बढ़ जाता है, हालांकि ये लेट फी बहुत ही ज्यादा नहीं होता है।
दिल्ली से ओम प्रकाश शर्मा है फोन लाइन पर। ओम प्रकाश जी आप हमें सुन पा रहे हैं?
जी सर।
जी अब पूछिए।
मैडम नमस्कार।
नमस्कार।
मैं ये कह रहा था जी मेरी मम्मी का स्वर्गवास 2020 में हुआ था, अक्टूबर 2020 में, तो हम वहां निगमबोध घाट दिल्ली गए थे डेथ सर्टिफिकेट लेने, उन्होंने मना कर दिया, बोले जी 2020 में लेते तो मिलता, हम गए थे पिछले साल, तो अब उन्होंने कहा कि वहां एसडीएम से लिखवा के लाओगे जब मिलेगा। अब हम वहां एसडीएम के यहां गए तो उन्होंने ये कह दिया कि जी हमारे यहां से पहले तो ऑनलाइन फॉर्म भरो, सीधा नहीं मिलेगा, और उसके बाद में हमारा आदमी जाएगा वो तुम्हारे कागजों की जांच करेगा घर पे जाके। 2-3 दिन हमने वेट करा, आदमी आया, कागज उसको सारे दिखा दिए, वो सारे कागज ले गया, बोले जी सिस्टम पे चेक करूंगा सारे, अब वो सिस्टम पे ले जाके उसने चेक करे या नहीं करे ये तो पता नहीं, एक दो दिन बाद फोन करके उसने कह दिया तुम्हारा वो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ सिस्टम पे। अब हमने उसको दो तीन बार कॉन्टेक्ट करा, भाई अगर सिस्टम पे नहीं हो रहा तो हमारे कागज वापस कर दो। अब न तो वो कागज वापस कर रहा है न वो फोन उठा रहा है, अब क्या करें।
देखिए अगर आपकी माताजी का देहांत हॉस्पिटल में हुआ था तो उस केस में आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यह हॉस्पिटल की जिम्मेदारी होती है कि वो इन्फॉर्मेशन को रजिस्ट्रार को दे और रजिस्ट्रेशन हो। लेकिन अगर आपकी माताजी का देहांत घर पे हुआ था तो उस केस में, और चूंकि 2020 का केस है तो उस केस में ये एक साल से ज्यादा डिले हो चुका है, तो उस केस में एसडीएम के ऑर्डर करने के बाद ही ये रजिस्ट्रार का के यहां रजिस्ट्रेशन होता है, और एसडीएम के यहां जो ऑर्डर निकलवाने के लिए हो सकता है एसडीएम को कुछ अपने को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती हो और वो उसको इन्वेस्टिगेशन भी करता है कि एक्चुअल में डेथ हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसके लिए वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं। हालांकि अगर ऑर्डर नहीं निकला है तो आप उनके यहां अपील कर सकते हैं कि भाई हमने ये सारे डॉक्यूमेंट दिए थे, हमारा इन्वेस्टिगेशन भी हुआ और अभी तक हमें ऑर्डर नहीं मिला है, तो आप उनके यहां ये अपील कर सकते हैं।
इसकी क्या प्रक्रिया है?
इसमें एसडीएम के यहां लिखित में रिपोर्ट होगा और उनके यहां लिखकर उनका,
पर इन्हें हॉस्पिटल से भी पहले प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा?
नहीं, अगर हॉस्पिटल में डेथ हुआ है तो फिर इनको कुछ नहीं करना। फिर
कहा जा रहा है कि डिजिटल प्रमाण पत्र होने से सार्वजनिक सेवाओं और सामाजिक लाभों की कुशल और पारदर्शी डिलीवरी में मदद मिलेगी, क्या कहना है आपका इस बारे में?
हाँ, इसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया था। एक्चुअली अभी किसी ने पूछा भी था कि बहुत सारे बेनिफिशियरी स्कीम्स में लोगों का डेथ हो जाता है और उसके बाद भी उनका नाम उसमें इंक्लूडेड है, जैसे कि राशन कार्ड है या पेंशन है, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर आपकी प्रॉपर टारगेटिंग नहीं हो रही है। तो अगर आप वेरियस बेनिफिशियरी स्कीम्स के डेटाबेस को बर्थ एंड डेथ के डेटाबेस से अपडेट कर लेते हैं तो नेचुरली वैसे व्यक्ति जिनकी की मृत्यु हो चुकी है वो बेनिफिशियरी डेटाबेस के से हट जाएगा, तो इस तरीके से वो एफिशिएंट डिलीवरी और डिस्ट्रीब्यूशन हो सकेगा।
दिल्ली से विपिन कुमार कुछ पूछना चाह रहे हैं।
नमस्कार जी।
नमस्कार
सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ बस ट्रेन एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो उसमें बॉडी बिल्कुल डैमेज हो जाती है, परिवार वालों भी नहीं पहचान पाते कि बॉडी किसकी है, हमारी परिवार के आदमी की है कि किसी और की है, तो उस डेथ सर्टिफिकेट ये तो मालूम है कि मर गया है बंदे, पर उसका कंफर्म कैसे हो पाएगा कि उसकी डेथ सर्टिफिकेट कैसे ले पाएगा इंसान। और दूसरा एक छोटा सा सवाल साथ में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल टेलीफोन और सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ सारे आधार कार्ड में लिंक हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होता आगे आने वाले समय में आधार कार्ड ही उनका सारा हो जाए डाटा, वो आधार कार्ड ही सब जगह लगेगा, तो वो चीज आप बताएंगे।
इनका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था?
कि एक्सीडेंट में जब किसी की मृत्यु हो जाती है और वो बिल्कुल पहचानने योग्य नहीं रहता शरीर, तो ऐसे में कैसे वो किया जाएगा कि जिसकी मृत्यु हुई वो वही व्यक्ति है, एक्सीडेंट में जो आदमी मरा है वो फलाना आदमी है जिसको दावा कर रहे हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा?
एक्सीडेंट विक्टिम्स के केस में ये मेडिकल लीगल केसेस बन जाएगा ये। अच्छा। और उस केस में फिर ये पोस्टमार्टम करने की आवश्यकता पड़ेगी और उससे एस्टेब्लिश होगा उसकी आइडेंटिटी और ये, और उसके बाद फिर वो डेथ सर्टिफिकेट।
इनका ये भी कहना था कि आधार में ही क्यों ना सारी जानकारी रहे कि आधार का इस्तेमाल करें, कई बार सर्टिफिकेट्स गुम हो जाते हैं, ये कहना है इनका।
इसको मैं फिर स्पष्ट करना चाहूंगा कि आधार का पर्पस अलग है और बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन का पर्पस अलग है। आधार आधार एक्ट के अंडर बनता है, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट के अंडर बनता है। इससे ये एस्टेब्लिश होता है कि डेट और प्लेस ऑफ डेथ क्या है, आधार से वो एस्टेब्लिश नहीं होता, दोनों का पर्पस अलग है।
एक सवाल और है मेरी तरफ से कि पुराने जन्म प्रमाण पत्र से डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवाया जा सकता है?
ये अभी हमारा एक पोर्टल में लॉन्च अभी आने वाला है, उसमें यह प्रोसेस बहुत ही सिंपल हो जाएगा कि आप घर बैठे उसको अप्लाई कर सकते हैं और डिजिटाइज अपने बर्थ डेथ सर्टिफिकेट को डिजिटाइज कर सकते हैं। और हालांकि कुछ स्टेट्स में जैसे कि दिल्ली है, वो मैं दिल्ली में अभी भी ये आप ऑनलाइन ये कर सकती हैं, और जहां पे ये स्टेट्स में अभी सुविधा नहीं है वो रजिस्ट्रेशन यूनिट्स को सेंटर पे भी जाकर उसको डिजिटाइज किया जा सकता है।
तो आपका जो पोर्टल आने वाला जो रिवैम्प पोर्टल है उसकी ऐसे उसमें और क्या क्या विशेषताएं होंगी?
रिवैम्प पोर्टल में बहुत सारी सुविधाएं होंगी, जैसे कि अभी हमारे पोर्टल में डिलेड रजिस्ट्रेशन की सुविधा नहीं है, तो उसमें डिलेड रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। कई बार ऐसा होता है कि बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट में बच्चे का नाम या पेरेंट्स का नाम या डिजीज्ड का नाम के स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स हो जाती हैं या कुछ और भी एरर्स होते हैं, तो इसमें यह सुविधा दी जाएगी कि जब भी कोई रिपोर्ट करेगा, चाहे इन्फॉर्मेंट हो या चाहे हॉस्पिटल से हो, वो पहले उसका लिंक चला जाएगा पेरेंट्स के पास और पेरेंट्स उस सारे इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हैं और वेरीफाई होने के बाद जब कन्फर्म करेंगे तभी वो रजिस्ट्रार के पास जाएगा। इससे एरर फ्री रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी।
बच्चे का जो जन्म होता है तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपने कहा कि आधार, माता पिता का आधार नंबर होना जरूरी है, और अगर आधार नहीं हुआ तो भी क्या रजिस्ट्रेशन हो सकेगा?
प्रोविजन ये है कि अगर आधार नंबर माता पिता के पास नहीं है तो उसके बेसिस पे उसका बर्थ सर्टिफिकेट डिनाई नहीं किया जा सकता। हाँ, इसमें प्रोविजन ये है कि अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको बर्थ रजिस्ट्रेशन के समय में उसको प्रोवाइड कर दें।
और
अभी आपने एक वो जो प्रश्न पूछा था कि पोर्टल में और क्या क्या सुविधा है, जैसे कि कई बार बच्चों का सर्टिफिकेट जब बनाया जाता है उसका नाम नहीं होता है, और बाद में जब पेरेंट्स नाम रखते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट में नाम ऐड कराने के लिए भी ऑनलाइन पोर्टल में ये सुविधा होगी,
क्योंकि हमारे देश में तो बच्चे का नाम बहुत बाद में रखा जाता है, तो फिर दोबारा बनवाने की जरूरत पड़ेगी?
नहीं, वो बर्थ सर्टिफिकेट वही होगा लेकिन उसमें बस केवल आपका उस बच्चे का नाम आ जाता है।
और अगर कोई अपने बच्चे का नाम बाद में बदलवाना चाहे तो?
देखिए, नाम चेंज कर बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने का प्रोविजन एक्ट में नहीं है, लेकिन लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से कंसल्ट किया, तो इसमें यह है कि बर्थ सर्टिफिकेट में अगर पुराने नाम है और आपने नाम ही एकदम ऑल टुगेदर बदल दिया तो उसमें एलियास करके लिखा जा सकता है।
लेकिन जो स्कूल या कॉलेज के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उसमें तो नया नाम ही सिर्फ रहेगा, तो इसमें कोई बाधा तो उत्पन्न नहीं होगी कि जन्म वाले सर्टिफिकेट में ये करके उर्फ ये करके नाम लिखा हुआ है? मतलब कोई इससे कोई परेशानी तो नहीं आएगी बाद में?
ये इसमें परेशानी तो आ सकती है, लेकिन ये इसलिए नाम रखते के समय में उसमें हमें सावधानी रखना चाहिए।
जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम जन्म और मृत्यु के डिजिटली पंजीकरण पर चर्चा कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं एडिशनल रजिस्ट्रार जनरल संजीव कुमार। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और दूरदर्शन की डीटीएस सेवा पर भी उपलब्ध है। एक सवाल और है संजीव जी की, हमने पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं लेकिन थोड़ा और मैं विस्तार से जानना चाहूंगी कि जो गोद ले हुए अनाथ छोड़े हुए बच्चे और जो सरोगेसी के माध्यम से जो बच्चे पैदा होते हैं या जो सिंगल मदर है या सिंगल फादर या अविवाहित माँ जो है उनके बच्चों के पंजीकरण की प्रक्रिया क्या इससे आसान हो जाएगी जो नया अधिनियम आया है?
के पहले ये इनके पहले भी ऐसे बच्चों के रजिस्ट्रेशन किए जा रहे थे, लेकिन अब इसको एक्ट में लाकर इसको और लीगलाइज कर दिया गया है। अब एक्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी गई है कि ऐसे बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, तो ये पहले एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन से कैरी हो रहे थे, अब इसको एनेबलिंग लीगल प्रोविजंस एक्ट में डाल दिए गए हैं।
रजिस्ट्रार या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के आदेश या कार्रवाई से असंतुष्ट होने की स्थिति में अपील की जा सकती है?
हाँ, इनकी अपील की जा सकती है। रजिस्ट्रार से अगर किसी कोई असंतुष्ट है तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास अपील हो सकता है, और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से कोई असंतुष्ट है तो चीफ रजिस्ट्रार के पास जा सकते हैं। पहले यह प्रोविजन नहीं होने के चलते लोग कोर्ट में चले जाते थे, तो अब ग्रीवांस रिड्रेसल का इसमें हमारे अमेंडमेंट में यह लाया गया है।
अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन्स और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। संजीव जी स्टूडियो में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद
श्रोताओं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? कार्यक्रम के संबंध में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है eirnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात ठीक 9:30 बजे एक और मुद्दे को लेकर हम चर्चा के लिए फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कनकलता को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।